अध्याय सातवां। एक दिन प्रातःकाल जब मैं जनकपुर के एक तालाब के तट पर अकेला बैठा था, एक अजीब से दिखते साधु मेरे निकट आकर बैठ गए। उनके मुख से निकले पहले शब्दों ने ही मुझे सहमा दिया। सावधान, तितलियों के वेश में बिच्छू घूम रहे हैं। घबराकर मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कह रहा है। उन्होंने ध्यान से मेरी ओर देखा और कहा, साधुओं के वेश में राक्षसों के सामने मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए संभल जाओ। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, मैंने आशंका से पूछा। फिर कभी बताऊंगा तुम्हें। तुरंत विषय बदलकर उन्होंने वासुदेव नाम से अपना परिचय किया और अपने साथ एक ऐतिहासिक स्थान पर चलने का मुझे न्योता दिया। मैं मान गया। वासुदेव लगभग 30 वर्ष की अवस्था के सुंदर व्यक्ति थे। उनका व्यवहार अभिज्ञाज्य और उनकी बोली में ब्रिटिश अंग्रेजी का पुट था। वे सफ़ेद वस्त्र पहनते जो आश्चर्यजनक रूप से हमेशा साफ सुथरे रहते थे। उनके लंबे काले बाल संवरे हुए थे। अपनी संपूर्ण यात्रा में मैं कभी भी ऐसे बने ठने साधु से नहीं मिला था। उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक सभी विषयों में का ज्ञान था और मुझे भारत के इस भाग में मिले अधिकांश लोगों के समान वे भी श्रीराम के भक्त थे। जब उन्होंने मुझसे 3 दिन की पैदल यात्रा कर एक अनजान तीर्थस्थल पर जाने के लिए कहा, तो मैंने स्वीकार कर लिया। हम गांव से होकर चलने लगे और प्रतिदिन भिक्षा में दाल चावल पाते, जो मेरे प्रिय व्यंजनों में से एक थे। रास्ते में जो भी वासुदेव से मिलता, वो उनके भले स्वभाव से मोहित हुए बिना नहीं रहता। वासुदेव का नियम था कि वे खुले मैदान या वन में ही भोजन पकाएंगे। वे 2 पत्थरों से चूल्हा बनाकर उन पर बर्तन रखते और मैं सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाता। वे इतनी उत्कृष्टता से दाल चावल बनाते मानो एक कलाकार की कोई श्रेष्ठ कृति हो। चलते चलते हमने अनेक विषयों पर चर्चा की। वासुदेव को मानो सभी का ज्ञान था, लेकिन एक बात मुझे उलझन में डाल रही थी। मुझे भान हुआ कि उनके हंसी खुशी के मुखौटे के पीछे बहुत व्यथा छिपी हुई थी। फिर भी वे अपने कष्ट छिपाने और आंसुओं को रोकने का संघर्ष कर रहे थे। उनके प्रति मेरा स्नेह और कौतूहल बढ़ता ही गया। एक रात जब हम वर्षा से बचने के लिए एक गौशाला में सोए, तो रात को अजीब व गरीब तरीके से मुझे भयानक दुस्वप्न आए। भूत प्रेत मुझ पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, मैं सोचने लगा। 3 दिन पश्चात हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, जो एक उपेक्षित मैदान में एक ऐतिहासिक शिला थी। शाम होते होते तेज हवा बहने लगी और बढ़ती नमी को सूंघकर हम समझ गए कि मानसून की भारी वर्षा होने वाली है। हमने आसपास छिर छिपाने का स्थान ढूंढा और पत्थर का एक छोटा घर पाया, जो लंबे समय से वीरान पड़ा था। हम अंदर गए और छत से लटकते अनेक चमगादड़ों को बाहर भगा दिया। तेजी से पर फड़फड़ाते हुए वे उड़ गए। घर में 10 फुट लंबे चौड़े एक कमरे के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वो 2 स्थानों से खुला था, जहां कभी खिड़की और दरवाज़ा हुआ करते थे। दीवारें भुरभुरा रही थीं। काई और मकड़ी के जाले वहां एकमात्र साज सामान थे। अंदर हम चुपचाप बैठे थे। बाहर भयंकर गर्जना से धरती कांपने लगी। तूफान पेड़ों को जोर जोर से हिलाने लगा और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वासुदेव ने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा। उन्होंने पूछा, क्या मैं अपने अंदर उठ रहे तूफान को तुम्हें बताकर शांत कर लूँ? मेरे लिए यही सम्मान की बात थी कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। मैंने हामी भरी। वासुदेव ने मुझे बताया कि उनका जन्म कलकत्ता के एक धनी परिवार में हुआ था और PhD प्राप्त करने के पश्चात वे एक विख्यात प्रोफेसर बन गए। कुछ राम भक्तों से मिलकर वे भी भगवान राम की पूजा करने लगे। उन्होंने बताया, एक दिन 2 सज्जन मेरे कार्यालय में आए और अपने गुरु द्वारा भेजे गए उपहार और भोजन मेरे सामने रख दिए। ऐसे कुछ और मुलाकातों के पश्चात उन्होंने मुझे अपने गुरु से मिलने के लिए बुलाया। एक दिन मैं चला गया। वो गुरु वासुदेव के जीवन के विषय में सब कुछ जानता था, यहाँ तक कि उनकी अंतरंग की बातें भी। वो वासुदेव का मन भी पढ़ सकता था। आश्चर्यचकित हो, वासुदेव ने नियमित रूप से उस व्यक्ति से मिलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं ध्यानपूर्वक सुनने लगा, क्योंकि हमेशा की तरह मैं वो कहानी जानने के लिए उत्सुक था कि कैसे कोई व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है। एक दिन वासुदेव ने कहा, उस गुरु ने अपने मन की बात कही। मैंने ध्यान से तुम्हें परखा है, उसने कहा। तुम युवा, प्रसिद्ध और बुद्धिमान हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं तुम्हें अपने अनुष्ठानों में दीक्षा देना चाहता हूँ। इन यादों के साथ उभरी तीव्र वेदना को वासुदेव अंदर ही अंदर पी गए। मैंने उसे कहा कि मैं उस विषय में सोचूंगा। उनका स्वर धीमा हो गया और उन्होंने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, मानो वे अपने अतीत के अनकहे कष्टों को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। परेशान हो उन्होंने मेरी ओर देखा। रिचर्ड, उन्होंने गहरी सांस ली, मैं तुम्हारी मन को अपनी भयानक कहानी से दूषित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। मुझे किसी से तो कहना ही होगा। क्या मैं आगे कहूँ? हाँ हाँ कहो। वो खिड़की के सुराख से बाहर देखने लगे। चमकती बिजली में उनके चेहरे की पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। अंततः हताशा से भरे वो बोले, मैंने उस गुरु के विषय में जांच पड़ताल की और पाया कि वो एक शक्तिशाली संस्था का प्रमुख था और स्वयं काले जादू एवं तंत्रों में माहिर था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। क्या तुम काले तंत्र के विषय में कुछ जानते हो रिचर्ड? नहीं, मैंने उत्तर दिया। वो कांप उठे और उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने बताया कि तंत्र विद्या अत्यंत शक्तिशाली होती है। दूसरों के कल्याण अथवा विनाश दोनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ अच्छे तांत्रिक होते हैं जो अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता की सेवा के लिए करते हैं, और जो कुछ काले तांत्रिक होते हैं जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अन्यों के जीवन का शोषण और अपने निशंसता भरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अवर्णनीय अनुष्ठानों, तांत्रिक यौन क्रियाओं और योग से वे बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। ये गुरु एक अत्यंत शक्तिशाली काला तांत्रिक था जिसके पास दूसरों के मन पर काबू पाने और उनके जीवन में फेरबदल करने की शक्ति थी। खोजबीन के दौरान यह जानकर मैं भयभीत हो गया कि दीक्षा के समय वो शिष्य की आत्मा पर कई जन्मों तक नियंत्रण पा लेता है। मैं दोबारा उसके पास नहीं गया। लेकिन वासुदेव, यदि तुम बच निकले तो अभी उसे याद करके तुम क्यों कांप रहे हो? वो तो केवल शुरुआत थी, उन्होंने आगे कहा। प्रतिदिन गुरु के शिष्य मुझे तंग करने लगे। मेरे कार्यालय में, घर में या जहां कहीं भी मैं जाता, मैं उनसे बच नहीं सकता था। एक दिन उनमें से पांच मेरे कार्यालय में आ धमके और मेरी मेज को घेर लिया। मुझे लगा मानो मैं बंधक बन गया था। अगले क्षण गुरु मेरे सम्मुख खड़ा था, मेरी आत्मा पर कब्जा करने के लिए। उसने मुझे चेतावनी दी, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरे हो। यदि मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इतना धन और शोहरत दूंगा कि जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। यदि नहीं मानोगे तो कसम से कहता हूं, तुम्हारे मरने तक तुम्हें सताता रहूंगा। क्रोध से आग बबूला हो मैंने उसे मना कर दिया। उसकी आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से भभकने लगी। मुझे गालियां देते हुए वो चला गया। वासुदेव ने ठंडी सांस भरी। एक शाम जब मैं अपने घर आया तो मैंने पाया कि मेरी विधवा माँ उसके चंगुल में फंस चुकी थी। गुस्से से कांपते हुए वो मुझे डांटने लगी, तुमने क्यों उस साधु का अपमान किया? तुम्हें उसका शिष्य बनना ही होगा। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने उसकी क्रूर चालों का वर्णन करना चाहा, किंतु मेरी माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। गुरु और उसके पिट्टुओं ने मेरी माँ को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। कुछ दिनों पश्चात मेरी माँ ने मुझे मेरे ही घर से निकाल फेंका, ये कहते हुए कि वो मेरे पापों की भागी नहीं बनेगी। क्या हो रहा था ये मेरी दुनिया को? फिर उन लोगों के प्रभाव से मेरे कॉलेज के प्राध्यापक ने भी मुझे नौकरी से निष्कासित कर दिया। बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरी और उसकी एक बड़ी शाखा टूटकर धड़ाम से हमारी छत पर आ गिरी। हम स्तब्ध हो गए। उस प्रलयकारी बिजली के पीछे पीछे बादलों की गर्जना का ऐसा विस्फोट हुआ जो मानो समूचे ब्रह्मांड को थर्रा रहा था। वासुदेव पीला पड़ गया। कांपती आवाज में उसने आगे कहा, बेघर और बेरोजगारी, मैं जहां भी जाता उस तांत्रिक के चेले मुझे परेशान करने आते। उन्होंने पुलिस को भी बहका दिया और पुलिस ने मुझे सुरक्षा प्रदान करने से मना कर दिया। कलकत्ता छोड़ने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं बचा। मैं जहां कहीं भी जाता अपनी मायावी शक्तियों से वो तांत्रिक जान जाता और अपने शिष्यों को भेजकर मुझे उत्पीड़ित करता। वासुदेव ने जो भी नौकरी लेता, उस तांत्रिक गुरु के चेले उसके मालिक को उसे निकालने के लिए विश्वस्त कर देते। वो जो भी घर किराए पर लेता, वे उसके मकान मालिक को उससे मकान खाली करवाने के लिए मना लेते। वासुदेव ने समाचार पत्रों में भी अपनी कहानी छपवाने का प्रयास किया, किंतु किसी पत्रकार ने उस पर विश्वास नहीं किया। मेरा जीवन बिखर गया, उन्होंने कहा। उसी क्षण एक बड़ा मेंढक दरवाजे से कूदकर भीतर आया। उसकी चमचमाती आंखें मुझे घूरने लगी। मैं सोचने लगा कि कहीं वो उस काले तांत्रिक का गुप्तचर तो नहीं है। इस विचार से मैं कांप गया। वासुदेव ने मानो मेरे मन की बात भांप ली। पक्का तुम आगे सुनना चाहते हो, उन्होंने पूछा। पूरा आकाश बादलों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मालूम नहीं वासुदेव, मैंने स्वीकार किया। मैं भयभीत था, किंतु मुझे लगा कि उनकी पूरी कहानी सुनना महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या हुआ? मेरी दृढ़ता से क्रोधित हो उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे मारने का प्रण कर लिया। काले जादू और मंत्रों से उसने एक अदृश्य शस्त्र बनाया जो शरीर से आत्मा को अलग कर देता है। दूसरे शब्दों में वो शिकार को मार देता है, किंतु शरीर को मारना उसके काम का छोटा सा हिस्सा है। जीवन और मृत्यु के अंतरिम काल में वो तांत्रिक आत्मा को ढके सूक्ष्म शरीर पर काबू पा लेता है। जैसे ही उस अदृश्य शस्त्र ने मुझ पर प्रहार किया, मेरे शरीर और मन को मानो लकवा मार गया। भूत प्रेत मुझे त्रस्त करने लगे और मैं उनका अनुभव कर पा रहा था। रक्षा की याचना करते हुए मैंने भगवान का नाम जपना शुरू किया। जब तक वो नाम मेरे मन में था, वो अदृश्य शस्त्र मेरे प्राण नहीं खींच पाया। पूरे एक दिन और रात उस शस्त्र ने मुझे प्रताड़ित किया। मैं जानता था कि यदि मैंने एक क्षण के लिए भी नाम स्मरण रोका तो मुझे मृत्यु से भी बढ़तर गति मिलेगी। मैं निरंतर नाम जपता रहा। भगवान के नाम के सामने वो शस्त्र मुझे मारने में असमर्थ रहा। यदि किसी दुष्ट तांत्रिक का शस्त्र अपने शिकार को नहीं मार पाता है तो वो लौटकर अपने भेजने वाले को ही मार देता है। इस प्रकार अपने ही जादू के हाथों वो काला तांत्रिक मारा गया। भगवान के नामों ने मेरी रक्षा की। यह खौफनाक कहानी सुनकर मैं सिर से पांव तक सिहर उठा और सुनने के लिए मैं आगे की ओर झुका। वो दुष्ट तांत्रिक अब भी है, केवल उसकी स्थूल देह नहीं है। अभी वो प्रेत योनि से अपने शिष्यों को नियंत्रित करता है और मैं जहां भी छिपता हूं वो बदला लेने के लिए उन्हें वहां भेज देता है। वो हर समय मुझे ढूंढ लेता है। मैं कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में वे मुझे आतंकित करने पहुंच जाते हैं। भारी तूफान अब शांत होने लगा था। उठते सन्नाटे में वासुदेव ने आह भरी। इसी कारणवश अपनी इच्छा और स्वभाव के विपरीत मुझे बेघर साधु बनना पड़ा। मैं जानता हूं कि यदि मैं सच्ची भावना से भगवान को समर्पण करूंगा तो वे मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन जब तक वो दिन आएगा मुझे छिपते हुए इसी प्रकार साधु के वेश में भागते रहना होगा। झिंगूर आवाज करने लगे। वासुदेव ने गहराई से मेरी आंखों में देखा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें ये सब बताया। अनेक वर्षों तक मैंने ये राज केवल अपने तक ही रखा था, लेकिन ये मुझे किसी न किसी को तो बताना था। रिचर्ड, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, अंततः ये मेरी ही करनी का फल है। मैं समझ नहीं पाया था कि वे स्वयं को कैसे दोषी ठहरा रहे थे। मैंने उन्हें इसे समझाने के लिए कहा। नम्रता से उन्होंने अपनी वर्तमान समस्याओं का कारण अपने पिछले जन्मों के कर्म बताया। पता नहीं मैंने क्या किया था जिसके फलस्वरूप मुझे ऐसी परेशानियां भोगनी पड़ रही है, उन्होंने कहा। लेकिन मैं जानता हूं कि ये न्यायोचित है, और मैं ये भी जानता हूं कि यदि मैं सच्चाई से इस परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा तो भगवान की शरण लूंगा तो वे मेरा उद्धार करेंगे। वासुदेव ने अपने कांपते हाथों से मेरे हाथों को थामते हुए एक अंतिम विनती की। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो, अन्यथा तुम भी इसमें फंस जाओगे। यदि मैं तुम्हें प्रातः यहां नहीं पाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा। मेरे भाई, अपने पथ की खोज करते हुए कृपया सावधान रहना। तुम्हारा सामना शक्तिशाली लोगों से हो रहा है और सभी लोग भले नहीं होते, और कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना करना। हम चुपचाप बैठे रहे। मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। भारत में प्राप्त अनुभवों से मैं जानता हूं कि अनेक गुरुओं के पास शक्तिशाली सिद्धियां होती है, जिनमें से एक अपने अनुयायियों से मनचाह कार्य करवाने की भी शक्ति है। अपने मित्र की कहानी सुनकर मैं पागल कुत्तों की झुंड से भी अधिक डर गया। कम से कम मैं कुत्तों को देखकर उन्हें भगा तो सकता था, किंतु इन अदृश्य शक्तियों को कैसे भगाया जाए जो आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर एक बेखबर व्यक्ति पर कभी भी हमला कर सकती हैं। वासुदेव फिर अपनी बाह पर सिर रख मिट्टी पर सो गए, किंतु नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने दीवार में बने छेद से देखा छटते बादलों के पीछे तारे निकल रहे थे, किंतु चांद नहीं था। मेरे निकट लेटा वासुदेव नींद में बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। क्या मैं इनके जीवन की भयानक जटिलताओं में फंसना चाहता हूँ? इस विचार ने मुझे सहरा दिया। सिवाय प्रार्थना करने के मुझे उनकी सहायता का और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, और उन्होंने मुझसे वही करने का निवेदन किया था। जब वे नींद में करवटें बदलता कराह रहे थे, मैं रात के अंधकार में निकल पड़ा। मैंने प्रार्थना की जिस पथ का मैं चुनाव करूं वो सुरक्षित हो और वासुदेव को भी शांति और सुरक्षा प्राप्त हो। मुझे अपने मार्ग में आगे भी अनेक अनुभव मिलते रहे, कुछ अंधकार भरे तो कुछ उज्ज्वल। प्रत्येक अनुभव मुझे अलग अलग दुनिया की झलक दिखाता था। ये मेरे ऊपर था कि मैं कौन सा मार्ग चुनकर उसकी दुनिया को अपनाऊं। जनकपुर पहुंचने पर जिन साधुओं ने मेरा अभिवादन किया, उनमें से अधिकतर मेरे दादाजी की अवस्था के थे। जब मैं जानकी मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तब एक युवा नेपाली छात्र मेरे पास आया। उसका नाम था विष्णु प्रसाद। वो अच्छी वेशभूषा पहने, धर्मपरायण स्वभाव और गोल चेहरे वाला लड़का था। एक पश्चिमी युवक को साधु का जीवन अपनाते देख वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुझे अपने गांव ब्रह्मपुर चलने के लिए कहा। उसका एक घर एक सुंदर आश्रम के समान था। चमचमाते फर्नीचर, कालीन, पीतल के सजावटी मटके और फूलों भरे बगीचे से परिवार का ऐश्वर्य स्पष्ट दिख रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो विष्णु के माता पिता मेरा हार्दिक स्वागत करने के लिए खड़े थे और मुझे स्वादिष्ट भोजन परोसा, जिसमें सुगंधित रसीली एवं मसालेदार सब्जियां और घी से चमचमाते चावल थे। मैंने सुख से वहां अनेक दिन बिताए। उनके चाचा, ताऊ, उनकी पत्नियां और उनके सबके बच्चे एक ही छत के नीचे रहते थे, किंतु मैंने कभी भी किसी का गुस्सा भरा ऊंचा स्वर नहीं सुना। उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं था। प्रातः बच्चे आदर से बड़ों के पैर छूते और बड़े उन्हें आशीर्वाद देते। सभी बच्चे, यहाँ तक कि किशोर भी, बड़ों के प्रति स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी थे और छोटे बच्चे बड़े पुत्र का सम्मान अपने माता पिता के समान करते थे। 1960 के दशक में अमेरिका में बड़े होने के कारण मैंने देखा था कि कैसी हमारी पीढ़ी के युवा अपने बड़े बूढ़ों से विद्रोह करते थे। यहाँ पर किशोर बच्चों द्वारा बड़ों का इस प्रकार सम्मान देखना मेरे लिए केवल एक अत्यंत मधुर अनुभव था। घर का कोना कोना पूरी तरह से स्वच्छ था मुझे छोड़कर। मुझे लगा कि एक उच्च श्रेणी के सुरुचि संपन्न महल में मैं एक मैला कुचेला फकीर हूँ। मेरे शरीर की हालत काफ़ी गिरी हुई लग रही थी, जिसे देखते हुए उन लोगों ने मेरे बिवाई फटे पैरों के लिए बाम दी। यद्यपि उन्होंने मुझे सोने के लिए एक आरामदायक पलंग के साथ निजी कमरा दिया था, मैंने बगीचे में एक अशोक वृक्ष के नीचे सोना पसंद किया। प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या समय परिवार के सभी सदस्य पूजा के लिए श्रीराम के एक मंदिर में एकत्रित होते। वो मंदिर घर के बीचों बीच था और दिन भर घर की स्त्रियां वहां विभिन्न भक्तिमय सेवाएं करती रहती। मैंने उस घर में आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखा। शाम को मैं विष्णु प्रसाद के साथ उनके सुंदर बगीचे में बैठता, जहां गेंदे, गुलाब और फूलों से लदे अनेक पौधे थे। कभी कभी उनके पिता तारा प्रसाद भी हमारे साथ बैठते। यद्यपि वे बाल बच्चेदार गृहस्थ थे, फिर भी उनके शुद्ध चरित्र ने मुझे अब तक मिले अनेक तपस्वियों के चरित्र से भी कहीं अधिक प्रभावित किया। मैं विचार करने लगा, आध्यात्मिकता वास्तव में हृदय की भावनाओं पर आधारित है। जैसे जैसे विष्णु प्रसाद के परिवार से मेरा प्रेम बढ़ता गया, वो उतना ही मेरा घनिष्ठ मित्र बनता गया। इन भले लोगों से मैंने पूरब की पारिवारिक संस्कारों के विषय में सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे इस विचार की पुष्टि हो गई कि सच्ची आध्यात्मिकता का पालन अनेक रूपों से या रूपों में किया जा सकता है। फिर भी मैं इन सुख सुविधाओं के बीच अधिक समय नहीं रह सकता था, क्योंकि मैंने एक साधु का जीवन चुना था। विदा लेते समय पूरा परिवार मुझे छोड़ने हेतु दरवाजे तक आया। जब मैं मुड़कर ईंट के बने मार्ग पर चलने लगा तो वे सब रो दिए। मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। अब मैं जो पथ चुन रहा था वो मुझे पहले से कहीं अधिक अनदेखे खतरों से भरा हुआ लग रहा था। सत्य को प्राप्ति करने की अपनी उत्कंठा के लिए, जिसे शायद मैं किसी को ठीक से समझा नहीं सकता था, मैंने अपने घर के आरामदायक जीवन को छोड़ दिया था। और अपनी यात्रा में आने वाली अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न हो रहे भय के बावजूद भी सुख सुविधाओं को त्यागता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। जनकपुर से मैं वापस काठमांडू गया। वहां से 7 मील पूर्व में स्थित बोधनाथ पर्वत पहुंचा। पर्वत के नीचे फूलों से भरे वृक्षों के एक कुंज में मैं ध्यान करने लगा। आंखें खोलने पर मैंने एक सुंदर इंद्रधनुष को देखा जो हिमालय की समूची घाटी पर खींचा हुआ था और मानसून मेघों से रची नीली पृष्ठभूमि पर चमक रहा था। मैंने शीतल सौंधी पवन की एक गहरी सांस ली। शीघ्र ही ऊंची पदचापों ने मुझे मेरी स्वप्नील स्थिति से निकालकर मेरा ध्यान एक यूरोपीय पर्यटक की ओर आकर्षित किया। वो खाने पीने के सामान का एक बड़ा थैला हाथ में लिए छाती फुलाए जा रहा था। 6 फुट से ऊंचे सुनहरे बालों और टी शर्ट के नीचे से उभरती मांसपेशियों वाले इस व्यक्ति का डील डॉल एक बॉडी बिल्डर जैसा था। अचानक जंगल से निकले भूरे बंदरों की एक टोली ने उसे घेर लिया। भले ही हर बंदर उसके सामने पिद्दी दिख रहा था, वे बंदर उसकी कमजोरी ढूंढकर हमला करने की कला अच्छी तरह से जानते थे। वे दांत दिखाते हुए गुर्राए और डरावनी मुद्राओं से उसे धमकाने लगे। उस महाबली ने अपनी एक बलिष्ठ भुजा में अपना सामान पकड़ा और दूसरी से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। फिर एक योद्धा की भांति उस पत्थर को घुमाते हुए उसने उन छोटे लुटेरों को कचूमर बनाने की धमकी दी। किंतु बंदरों को कोई फर्क नहीं पड़ा था तथा वे पहले से भी ज्यादा जोर से गुर्राने लगे। वे छोटी छलांगे भर अपने शिकार के पास आए और उसके मन पर हमला करने में सफल हो गए। डर से उस पहलवान के हाथ पांव फूल गए और वो एक सहमे हुए बच्चे के समान कांपने लगा। अंत में एक छोटा बंदर ठीक उसके पीछे आ गया और उसके हाथ से थैला खींच लिया। पहलवान ने रोकने की चेष्टा भी नहीं की। बिना उस पर ध्यान दिए बंदर थैले के इर्द गिर्द खाने के लिए जमा हो गए। घबराहट से कांपता हुआ वो महाकाय दुबक कर निकल गया। कुछ ही क्षणों में लगभग 8 वर्ष का एक दुबला पतला नेपाली लड़का वहां पहुंचा। बंदरों की टोली ने अपनी लूट का भोग करना आरंभ ही किया था। उस छोटे बच्चे को आता देख उनमें खलबली मच गई। बच्चा हाथ में पत्थर लिए उनकी ओर दौड़ा। लुटेरों का दल चिखने लगा। उनकी आंखों में आतंक उतर आया। अचानक उन्होंने थैला छोड़ा और भाग खड़े हुए। उस बच्चे ने थैला उठाया और खाने बैठ गया। सारे बंदर चिंताग्रस्त हो दूर से देख रहे थे। मैं आश्चर्यचकित था, यह क्या हुआ? वो नटखट बालक मुश्किल से उस भीम का यूरोपी के एक हाथ के बराबर था। बंदर उस भीमसेन के धमकाने से टले नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके मन में बैठे भय को भांप लिया था। किंतु वे उस बालक से डर गए, क्योंकि उस बालक को उनसे कोई भय नहीं था। भगवान की ओर निरंतर स्पष्ट होते मेरे मार्ग पर ये घटना मुझे क्या सिखा रही थी? मैं जंगली कुत्तों के झुंड, वासुदेव की भयावह कहानी और काले तांत्रिक के विषय में सोचने लगा। मुझे डर था कि यदि मैं जल्दबाजी करूंगा तो किसी धूर्त गुरु के चंगुल में फंस जाऊंगा। लेकिन मैं देख पा रहा था कि कैसे अत्यधिक भय मेरी प्रगति को रोक सकता था। यदि हमारे मन में डर बैठ जाता है तो हम कमजोर होकर हार सकते हैं। वो विदेशी व्यक्ति बंदरों से अपरिचित था, किंतु नेपाली बच्चा जीवन भर बंदरों के बीच रहा था, इसलिए हम उससे डरते हैं जिसे हम नहीं जानते। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के ज्ञान और भगवान में सच्ची श्रद्धा से हम समस्त भयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, कृपया मुझे ऐसा साहस दें जिससे मैं आप तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर सकूं। जब मैं अपने इन विचारों पर मनन कर रहा था, वो मुस्कुराता हुआ बालक भागा भागा मेरे पास आया और थैले से कुछ केले निकालकर मुझे देने लगा। बंदर मुझे एक भावी शिकार मानकर उत्साह से चीं चीं करने लगे। उन्होंने मुझे ये सिखला दिया कि मुझमें और उस यूरोपीय पर्यटक में बहुत समानताएं थीं, जितनी मुझे लगती थी उससे कहीं अधिक। ये सोचते हुए कि अभी मुझे उस बालक की मासूम निर्भय श्रद्धा तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है, मैंने मुस्कुराते हुए उस बालक को मना कर दिया। वनों में भ्रमण करते हुए मुझे सीताराम बाबा मिले, एक असाधारण व्यक्ति जिनका मैं प्रेम से खड़े बाबा के रूप में स्मरण किया करता हूँ। गहरे पक्के रंग वाले सीताराम बाबा 62 वर्ष के थे। उनकी आंखें बड़ी एवं भूरी और चेहरे पर दाढ़ी थी तथा वे टाट से बना एक सादा परिधान पहनते जो उनकी गर्दन से टखनों तक आता था। जब मैंने उनसे पूछा कि वे टाट ही क्यों पहनते थे तो उन्होंने उत्तर दिया कि मोटी टाट की बनावट खुजली उत्पन्न करके उन्हें हमेशा कष्टप्रद स्थिति में रखती है। इस प्रकार वो उन्हें सदैव श्रीराम के स्मरण में आनंद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मेरे लिए उससे भी अधिक विस्मयकारी उनकी लकड़ी की खपचियाँ थीं जिन्हें वे अपने टखनों के चारों ओर बांध कर रखते थे। भले ही उनका रूप अजीब था, उन्होंने मेरी देखभाल इतने प्रेम से की जितने प्रेम से एक पिता अपने पुत्र की करता है। हिमालय में मुझे मिले अन्य योगियों की भांति सीताराम बाबा भी कठोर व्रतों का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य के व्रत से भी कहीं अधिक। उन्होंने व्रत लिया था कि वे हमेशा पैरों पर खड़े रहेंगे, कभी धरती पर बैठेंगे या लेटेंगे नहीं। इसलिए अपने शरीर को सहारा देने के लिए वे अपने टखनों के आसपास लकड़ी की खपचियां बांधते थे। लगभग 50 वर्ष से इस व्रत का पालन कर रहे थे। भिक्षा पात्र और जपमाला के साथ वे एक रस्सी और लकड़ी का फट्टा लिए घूमते थे जिसे वे किसी पेड़ से लटकाकर एक झूले के समान बना लेते थे। रात को वे इसी का सहारा लेकर खड़े खड़े सो जाते थे। उन्होंने चार दीवारी के भीतर भी न सोने का व्रत लिया था और शाकाहारी होने के साथ साथ कभी भी अन्न, दाल या फलियां नहीं खाते थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें इस व्रत का पालन करते देखा। भ्रमण करते साधु साधारणतः उन सस्ते खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं जिसकी भिक्षा लोग आसानी से दे देते हैं, जैसे दाल, रोटी, चावल आदि। इन सब में अन्न होता है। बाबा और मैं एक साथ घूमते थे। प्रतिदिन वे प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए दाल चावल की भिक्षा मांगते, लकड़ियां इकट्ठी करते और पत्थरों से बनाए चूल्हे पर भोजन पकाना आरंभ करते। भोजन पकाते हुए वे पूरा समय या तो खड़े रहते या उकड़ बैठते। जब भोजन बन जाता तो वे प्रेम से प्रार्थना एवं मंत्रों के साथ अपने आराध्य श्रीराम के चित्र को उसका भोग लगाते, फिर वे सब कुछ मुझे परोस देते। लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि वे क्या खाते हैं। उनके साथ बिताए दिनों में मैंने कभी भी मुट्ठी भर मूंगफलियों के अतिरिक्त कुछ खाते नहीं देखा। यही एकमात्र भोजन था जिससे उनका व्रत नहीं टूटता था। फिर भी वे परिश्रम करके मुझे अच्छी तरह खिलाने में बहुत प्रसन्न होते। वो कहते थे कि भगवान के प्रति प्रेम दिखाने के लिए हमें उनके बच्चों की सस्नेह सेवा करनी चाहिए। एक दिन जब सीताराम बाबा को घर घर भिक्षा मांगकर कुछ सब्जियां मिली तो मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अंततः आज उनके पास खाने के लिए कच्ची मूंगफलियों के अतिरिक्त कुछ और भी था, किंतु जब उन्होंने मुझे प्रसाद परोसा तो ये देखकर मेरा हृदय बैठ गया कि उन्होंने सारी सब्जियां मेरे दाल और चावल में डाल दी और अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया था। अचंभित हो मैंने उनकी जांच पड़ताल की। ध्यान से उनकी गतिविधियों को देखने पर मैंने पाया कि उनके आचरण में कुछ भी कृत्रिम नहीं था। वे अपनी भक्ति में पूरी तरह से निष्ठावान थे। एक बार मैंने बाबा से पूछा, आप इतने कठोर व्रतों का पालन क्यों करते हैं? नम्रता से उत्तर मिला, इससे मुझे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि वे वास्तव में प्रसन्न थे। एक दिन सूर्योदय से पहले मैं वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर इस अद्भुत व्यक्ति के बारे में सोचने लगा। मैं उनके अजीबोगरीब व्रतों को समझ नहीं पा रहा था। वे अत्यंत कठोर एवं अनावश्यक भी लग रहे थे, किंतु फिर भी उन्होंने मेरा सच्चा प्रेम और विश्वास जीत लिया था। कहा जाता है कि कृत्रिम तपस्या हृदय को कठोर बना देती है, लेकिन उनका कोमल हृदय नम्रता, करुणा और भक्ति से भरा था। ईसा मसीह ने कहा है, आप एक पेड़ की पहचान उसके फल से कर सकते हैं। यद्यपि सीताराम बाबा एक अजीबोगरीब पेड़ के समान थे, उनके फल पके हुए एवं बहुत मीठे थे। सीताराम बाबा के संग मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ आया। मुझे मिलने वाले अधिकांश योगी भगवान को एक निराकार शक्ति मानकर उस पर ध्यान करते थे, जबकि बाबा जी और कुछ अन्य साधु भगवान को सर्वप्रेमी व्यक्ति मानकर उन पर ध्यान करते थे। रामसेवक स्वामी भी श्रीराम की सेवा अत्यंत व्यक्तिगत रूप में करते थे। श्रील प्रभुपाद ने भी भगवान श्री कृष्ण को एक सर्वाकर्षक व्यक्ति मानते हुए उनके प्रति सच्चा प्रेम व्यक्त किया था। क्या ये उन योगियों के विश्वास के विपरीत था जो अपनी आत्मा को एक परम निराकार शक्ति में विलीन करना चाहते थे? क्या ये उन बौद्धों की साधना के विरोध में था जो निर्गुण निर्वाण की परम अवस्था चाहते थे? बचपन में मैं स्वाभाविक रूप से भगवान को एक व्यक्ति मानकर उनसे प्रार्थना करता था, किंतु जब मैंने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि उनमें से अधिकांश का झुकाव भगवान के निराकार सर्वव्यापी स्वरूप की ओर अधिक था। एक दिन वन में इकट्ठे चलते हुए मैंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा जी, भगवान अंततः निर्गुण निराकार हैं या सगुण साकार? वे झटके से रुक गए, उनकी घनी भौहें सिकुड़ गई और कठोर जीवन से उभरी गहरी झुर्रियों से भरा उनका चेहरा झुक गया। उन्होंने गहरी सांस ली। यदि हमारा आकार और रूप है तो भगवान हमसे कम कैसे हो सकते हैं? भगवान के पास सब कुछ असीमित मात्रा में है। उन्होंने सिर हिलाया। यह गलत समझ मेरा हृदय तोड़ देती है। उनके इस उत्तर ने मुझे झकझोर दिया। मैं भगवान के स्वरूप के ऊपर इस मूलभूत मतभेद से अवगत होता जा रहा था। क्या वे निराकार हैं, शरीर रहित एक शक्ति या परम पुरुष? एक प्रकार से ये वही प्रश्न था जो बचपन में कड़कती बिजली की गर्जना से डरते हुए मैं स्वयं से पूछता था, भगवान कौन है? क्या वे मेरे माता पिता के समान स्नेहिल हैं या पवन के समान निराकार? मैं इस दार्शनिक मुद्दे को समझने के लिए जूझ रहा था और जानता था कि इसका उत्तर मुझे अपने मार्ग का चुनाव करने में सहायता प्रदान करेगा, लेकिन मुझे इस पहेली का हल नहीं मिल रहा था। मैं ऐसे अद्भुत संतों से मिलजुल रहा था जो ये दोनों विपरीत दृष्टिकोण रखते थे। अनेक दिनों पश्चात जब मैं सीताराम बाबा को छोड़कर जा रहा था तो मैं विचार करने लगा कि किसी व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर हम माप नहीं सकते कि वो व्यक्ति भगवान से कितना प्रेम करता है। एक ओर मैं ऐसे धर्मपरायण लोगों से मिला था जो व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन कर रहे थे, दूसरी ओर मुझे वन में रहने वाले ऐसे निराले एकांतवासी भी मिले थे, लेकिन इन सभी में मैंने जो समानताएं देखी वे थी उनकी नम्रता, अपनी साधना पर गहरा ध्यान और दूसरों की सेवा करने की असीमित लालसा। यहाँ पर सातवां अध्याय समाप्त होता है।